महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर एक साथ विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय श्री एक साथ क्षमा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूजनीय श्री एक साथ भव्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की
भगवान। बोलिए एक सासी परम पूजा चाहिए श्री विद्यासागर महाराज। महाराज की बोलिए एक से आठ श्री गुरु ने मांझा भी सागर महाराज की बोली एक से आठ श्री मुनिवर क्षमा सागर महाराज
जय जय परम पूज मुन्ना श्री भक्त सागर जी महाराज की जय मुनि संघ की जय
इस जीव की किस किस प्रकार से भ्रमण की गति है जाने कहां जिंदगी की शाम हो जाए जाने कहां जिंदगी की शाम हो जाए पता नहीं कौन कल कहां बिछड़ जाए पता नहीं कौन कब कहां बिछुड़ जाए काल की गति का कोई भरोसा नहीं है भाई काल की गति का कोई भरोसा नहीं है भाई हंसते हंसते कौन कब समाप्त हो जाए हंसते हंसते कौन कब समाप्त हो जाए इसलिए कहता हूं इसलिए कहता हूं सुनो दोस्तों आपस में प्यार से मिलो प्यार करना दोस्तों का काम है जाना है दुनिया से छोड़कर जाना है दुनिया से छोड़कर सबको इसलिए रूह है इसलिए रोज जले जलो मिलो और दोस्ती करो दुश्मनी को छोड़ दो जाने कहां जिंदगी की शाम हो जाए पता नहीं कौन कब कहां बिछड़ जाए काल की रात का कोई भरोसा नहीं है काल की रात का कोई भरोसा नहीं है हंसते हंसते कब कौन कहां बिछड़ जाए इसीलिए कहता हूं सुनो भाई आपस में प्यार से करो प्रेम से मिलो प्यार सबसे करो आपस में प्यार से मिलो प्यार सबसे करो जाना है दुनिया से छोड़कर सभी को पर दुश्मनी मत करो जाना है दुनिया से सबको छोड़कर पर दुश्मनी मत करो इसलिए किसी को दुश्मन मत बनाओ सबको दोस्त ही बनाओ दुश्मनी का क्या मतलब है कि दुश्मनी के कारण पूर्व हमें भी एक विद्यालय की किस प्रकार दशा भई सुनाता हूं इसी क्षेत्र की विजयार्ज गिरी पर्वत के दक्षिण दिशा में रत्नपुर नाम का नगर है। वहां पर गरुड़ नाम का राजा विद्याधर और गरुड़ा रानी, जिसकी सुवह विद्याधर राजा इंद्र के समान सुख भोगता हुआ अपना समय व्यतीत करता था। राजा गरुड़ जब चाहे तब अपने विमान से और अकचिन चेतराओं की वंदना को और तीर्थ क्षेत्रों की वंदना को बढ़ाने अपना मन बनाता था और जाता था। जैन धर्म में अति अनुयागी, धर्म कार्य में, दान देने में, पूजा भक्ति में, सब प्रकार से उसके लिए कोई भी कभी भी उस राजा के लिए कभी भी कोई अपने मन से ये नहीं चाहते थे कि ये राजा हमारा हमारे अहितकारी है। नहीं, सब प्रजा सब जन हितकारी ही मानते थे ऐसा वह राजा। पर भाई इस बामे तो उसने किसी को बैरी नहीं बनाया था। पूर्व भव का दुश्मन और आकर के आक्रमण करता है। किस प्रकार करता है कि एक वक्त राजा गरुड़ वंदना करते करते कैलाश पर्वत के कहीं भटक जाते हैं और किसी जंगल पे जाकर के निकलने के लिए होते हैं कि सामने से वह पूर्व जन्म का बैरी राजा विद्याधर चला आता है। उसकी दमन पर भी निगाह पड़ती है और गए राजा पर निगाह पड़ती है कि उसका भाव बिगड़ जाता है। देखो उसका भाव बिगड़ जाता है देखने ही से, और ऐसा भाव बिगड़ता है कि इनकी सारी विद्याओं को वो छीन देता है। विद्याओं को छीनता रहता है, इनका विमान बिगड़ हो जाता है। इनका विमान बिगड़ हो जाता है तो ये भूमि पे गिर पड़ती है। अब विद्याधर राजा कहां तो रत्न संचय पर नगर है, विद्याधर कहां इतने कैलाश गिरी के पास भटके हैं। अब राजा क्या करें, बिना विद्याओं के कहां जाएं। बहुत कठिन हो गई, लेकिन बात क्या है, किसी से कहते हैं कि भाई भगवान की भक्ति पूजन करते रहो, तुम्हारे पूर्व जन्म के जो भी कोई कर्म होंगे उनमें सहायता तुम्हारी अवश्य होगी। सो यहां ये तो नहीं लिखा कि वे कितने दिनों में मिल गए, लेकिन थोड़े समय में मुनिराज के दर्शन हो गए। जब मुनिराज के दर्शन भए तो राजा गरुड़ ने मुनिराज से विनय करी के हे भगवान, हम इस प्रकार से हमारा इस बार में कोई बैरी नहीं, लेकिन पूर्व कर्म के उदय को हमने देखा नहीं, सो हमारी विद्या छीन नहीं, बिना बातचीत के छीन नहीं। कुछ बातचीत नहीं भाई, कोई विरोध नहीं। हो मुनिराज ने कहा पूर्व का तुम्हारा बैर था, इसलिए उसने विद्या छीन कर चला गया है। अब तुम क्या करो, जिस प्रकार से तुम और अपना घर और राज मिले उसके लिए तुम क्या करो। कहते हैं उसके लिए तुम गरुड़ पंचमी व्रत करो। मुनिराज ने कहा तुम गरुड़ पंचमी व्रत करो। ये गरुड़ पंचमी व्रत करने से तुम्हारा सारी कार्य सफल हो जाएगा। यह कहते तो किस प्रकार करें? कहते भाई, इस व्रत के लिए तुम श्रावण श्री पंचमी को उपवास करो। सारे कार्यों को छोड़कर अनशन उपवास करो, भगवान का अभिषेक पूजन करो और मंदिर में ही व्यतीत करो। इस व्रत के लिए 5 साल करना है और उद्यापन भी करना है। 5-5 प्रकार की वस्तुएं मंदिर को भी प्रदान करना है और इस प्रकार से इस व्रत को तुम धारण करोगे तो तुम्हें सुलभता हो जाएगी। उनने उस व्रत के लिए धारण किया और उद्यापन किया और उस व्रत से उनके लिए सुलभता होने से उनके लिए विद्याओं की प्राप्ति हुई और वह राजा गरुड़ फिर से विद्याओं का आराधन करके सिद्ध करके और फिर अपने देश को चला गया। तो भाई कहते हैं, अगर हम धर्म करेंगे, भगवान की भक्ति करती रहेंगे तो हमारे लिए ऐसा मौका आए तो हमें सहायता जरूर मिलेगी। धर्म की सहायता से हमारे पूर्वों के कर्म भी कट जाएंगे उस राजा गरुड़ के समान और हमारे लिए अपना स्थान भी फिर मिल सकता है। वह राजा 5 साल के बाद में अपने राज में पहुंचता है जब विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। अगर मुनिराज के वचनों का विश्वास नहीं करता और यह व्रत धारण नहीं करता तो यह राजा गए भूमि गुजरों के समान दुख उठाता रहता। इसलिए भाई, हमारे लिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से और हमारे लिए सहायता मिलती है। देखो, मुनिराज आने के लिए कहाँ से आने के लिए और राजा गरुड़ के लिए सन्मार्ग बता कर चले गए। बोलिए महावीर स्वामी की।
अनुहार भगवंत प्यारे साधु ऋषि श्रीमान संयक संत सारे शास्त्रों को चलते हमको चलाते मनो विधय से सिर को झुकाते। परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी, भव्य सागर जी, साधर्म मनोवर, बहुत समय उपरांत प्रतीक्षा के बाद यहाँ आने का अवसर मिला और शिवपुरी तो शिवपुरी है, प्रत्येक जन चाहते कि हमें शिवपुरी मिल जाए और उस भावना को लेके हम भी चले आए। महाराज के दर्शन हुए। एक ही बात जो आपसे कही है वो ये कि जब उनकी दीक्षा हो गई तो आचार्य श्री बोले कि भैया मैंने पत्थर उठाया है, मैं समझी से नहीं उठाया, समझ के उठाया है, इसमें मूर्ति निकालूंगा। वो बात मैं स्मरण करता हूं और ये देखने आता हूं कि 22 वर्ष जो पक्षी मेरे साथ उस गदाई पर बैठा रहा, अब 22 वर्ष उड़ने को हो गए, बिछोड़ने को हो गए, साहस सीखना है कि कल देख रहा था कि दाढ़ी के बाल थे, आज सवेरे वो भी गया। इनका साहस हम सराहनीय है, उनकी सराहना करते और देन उस इनके गुरु की है, वो कहां से थे, कहां कर्नाटक में थे, कहां बुंदेलखंड में आ गए और उन सबका उद्धार उन्होंने कर दिया। तो भैया ये तो संस्कारी है, संस्कार लेके आए हैं, हम इनके सामने क्या लगते, हमारा क्या सम्मान, हमने क्या किया? अंधेरा देखना तो मेरे को देखो, उजाला देखना तो इनको देखो। दूसरे, इन्होंने 20 वर्ष पहले जिस दिन दीक्षा हो रही थी मैंने सपने कच्चे पक्के गृहस्थी की चर्चा जब सुनाई, हाथ में पकड़े था तो इन्होंने यही कहा कि यदि आपको गृहस्थी से उबन हो गई हो तो यहीं आ जाओ। हमें बात याद करता हूं कि 20 वर्ष पहले यदि मैंने इनका साथ कर लिया होता तो मेरा कल्याण हो जाता। अब 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, कमर झुकने को हो रही, मुंह से बोलने में तकलीफ होने लगी, तो अब ये विचार करता हूं कि अब तक भी कुछ हो जाए तो मैं तो उस मूर्ति के दर्शन करने आता हूं। ये मूर्ति बनी कि नहीं बनी ये समाज जाने और महाराज जाने, मैं तो अपने पत्थर को ही देखता हूं। मगर एक बहाना जरूर है कि जिस पत्थर से तुम देव बने मैं भी उस पत्थर का टुकड़ा हूं। यदि तुम उसमें जाके मूर्ति बन जाते हो तो मेरे को भी उस गलियारे में डाल देना जिसमें ये समाज उस पत्थर पर पैर रख के तुम्हारे दर्शन कर सके। इस मंगल भावना के साथ आप जो आदर मेरे को देना चाहते हैं वो आदर आचार्य विद्यासागर जी का और क्षमा सागर जी का है। हमने आपका भावना हमने समझ ली, मेरे को आदर आपने दिया, मैंने पा लिया और इन शब्दों के साथ विराम लेता हूं।
सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज्य मुंडाश्री क्षमा सागर जी महाराज की,
हम सभी लोग पिछले दिन से एक बात पर विचार कर रहे हैं और एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि अपना जो जीवन शेष रहा उसे हम कैसे और व्यवस्थित करें और अच्छा बनाएं। जब तक जीवन में श्रद्धा और समर्पण नहीं आता है तब तक जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं होती। यहां से हमने यात्रा शुरू की थी और फिर जैसे जैसे श्रद्धा और समर्पण बढ़ता जाता है वैसे वैसे आत्मा में रुचि जागती जाती है, अपने आत्म कल्याण का बोध होने लगता है। दुनिया भर की बातें जान लेने का नाम ज्ञान नहीं है भैया, सबको मालूम है दुनिया भर की बातें, लेकिन अपने जीवन का कल्याण मुझे करना है इस बात की लगन हो जाना, ऐसा ज्ञान हो जाना, वास्तव में वो सच्चा ज्ञान है। और फिर जो लगन अपने जीवन में अपने कल्याण की है उसकी पूर्ति के लिए कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ाना, भला आचरण करने लगना, इसी का नाम तो सम्यक चारित्र है। मैं कल बैठे बैठे बात को सोच रहा था कि कर्म की बंध की प्रक्रिया तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें अपन कि कर्म बंध तो सभी जीवों को निरंतर होता रहता है। कर्म बंध से वे ही बच सकते हैं जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण है। बाकी सारी चीजें कर लो आप कर्म बंध से बचने की, तो न होगा कुछ, आप हाथ पे हाथ धर के कोने में चुपचाप बैठ भी जाओ तब भी कर्म बंध नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो जाए तो बहुत सारे कर्मों का बंध अपने आप रुक जाए, और अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए सच्ची श्रद्धा के साथ में तो और कर्मों का आश्रय रुक जाएगा, और अगर हम थोड़े मोड़े व्रत नियम और संयम अंगीकार कर ले हुए तब तो फिर हमारे कर्मों की निर्जरा भी होना शुरू हो जाती है और कर्मों का बंध भी रुक जाता है। जो अज्ञानतावश बांधे कर्म है, खोटे कर्म वे भी निकलना शुरू हो जाते हैं, और जो भले कर्म है उनका संचय होने लगता है। एक दृष्टि की निर्मलता वाले के द्वारा जो भी शुभ क्रियाएं की जाती हैं वे सब उसके परंपरा से निर्वाण की कारण होती हैं, जिसको हम सातिशय पुण्य कहते हैं। पुण्य तो बहुत लोग करते हैं, पुण्य के काम भी बहुत लोग करते हैं, सारी दुनिया करती भले काम, लेकिन दृष्टि की निर्मलता हो, निष्काम भाव से किया गया पुण्य का कर्म ही हमें परंपरा से निर्वाण का कारण बनता है। इसलिए कल जो मैंने आपसे बात कही थी कि बुरे कर्मों से बचना और भले कर्म करना, सो भले कर्म अकेले करने से नहीं होगा, सच्ची श्रद्धा के साथ भले कर्म करने से होगा। नहीं तो अपने किसी स्वार्थ से तो हम भले कर्म बहुत कर लेते हैं। जैसे कि एक जगह पर स्कूल में बच्चों को समझाया गया कि देखो, अगर तुम किसी की मदद करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात, एक तो सस्ते हिसाब, इसमें क्या लगने वाला, दूसरे की मदद करेंगे तो अपने को बहुत भला होएगा अपना और स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग की आकांक्षा से दूसरे का भला करना है, दूसरे के भला होने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें स्वर्ग मिले ही से हमें करने। अगर ऐसी भावना से हम शुभ कर्म करेंगे तो ऐसे शुभ कर्म तो सारी दुनिया कर लेती है अपने स्वार्थ से, लेकिन निष्काम भाव से मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्राणी मात्र का कल्याण हो वे उसमें मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। देखो भैया, सब में पानी बरसे ऐसी भावना करने वाले के खेत में भी पानी बरसता है कि नहीं बरसता, लेकिन मेरे खेत में पानी बरसे ऐसा तो होता नहीं। बरसेगा तो सब क्यों बरसेगा, फसल हम जब भी काटेंगे तो अपने खेत की काटेंगे। जब हम भावना भाएंगे प्राणी मात्र के कल्याण की तो हमारा कल्याण तो नियम से होगा, लेकिन अपने कल्याण अकेले की भावना भाने से और अपना कल्याण हो जावे ऐसा नहीं है, वो तो हमारा स्वार्थ हो जाएगा। हमें ऐसे स्वार्थ से भला करने की प्रक्रिया नहीं सीखनी। वो स्कूल में जिस बच्चों को बताया गया तो दूसरे दिन तीन बच्चों ने हाथ उठाए कि हमने मदद करी। तो पहले वाले बच्चे से गुरुजी ने पूछा कि तुमने क्या मदद करी, कहते एक बूढ़ी अम्मा जी और रास्ता पार करना चाह रही थी तो हमने उनको रास्ता पार कराया। सबने बहुत ताली बजाई कि वाह बड़ा अच्छा काम किया आपने, तो फिर बहुत खुश हुए सब लोग कि इतना बढ़िया काम, स्वर्ग का सीधा काम है कि एक बूढ़ी अम्मा रास्ता पार करना चाह रही उनको रास्ता पार करवाई। फिर दूसरे वाले से पूछा तुमने क्या किया, कहते हमने भी बूढ़ी अम्मा को रास्ता पार करा। अरे दो लोगों को एक साथ कैसे मिल गई दो बूढ़ी अम्मा, एक को तुमने रास्ता पार करवाया एक को तुमने, अच्छी बात है। खैर उतना उत्साह नहीं हुआ जितना पहले वाले का सुन के हुआ था कि अच्छा तुम भी बैठ जाओ। तीसरे वाले से पूछा कहते हमने भी बूढ़ी अम्मा को पार करवाया। अब तो जरा मामला गड़बड़ हो गया, किया क्या था तुमने, तो कहने लगे से तो वो पार नहीं होना चाह रही थी लेकिन हमने फिर भी उनको इस पार कर दिया क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था, हम कौन सा अच्छा काम करते। तो एक ने उनको इस पार किया, दूसरे ने फिर इस पार कर दिया, तीसरे ने फिर इस पार कर दिया। ये करते हैं तीनों ने अपना स्वर्ग निश्चित कर लिया। क्या ऐसी भलाई करने से कल्याण होने वाला है, ऐसे भले काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें तो सिर्फ हमने अपने पुण्य कमाने के लिए ये काम किया। इसलिए सच्ची श्रद्धा के साथ और सच्चे ज्ञान के साथ जो हम भलाई करते हैं वो भलाई हमारे कर्मों को काटती भी है और भले कर्मों को हमें देती भी है। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता था कल की मैंने कहा तो, पर उसमें ये बात छूटी जा रही है, अकेले शुभ कर्म करने से काम नहीं बनने वाला, सच्ची श्रद्धा और निर्मल दृष्टि के साथ। शुभ कर्म और निर्मल दृष्टि क्या है, इस पर हम बहुत विचार कर चुके हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को वीतरागी बना दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को परम विशुद्ध अवस्था में ले जाकर स्थित कर दिया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जो उस रास्ते पर वीतरागता के चल रहे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इतने ही नहीं, इस संसार की वास्तविकता का ज्ञान भी होना चाहिए, ये संसार कैसा है, इतनी सब बातें यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने भीतर, तब जाकर के दृष्टि निर्मल होती है और तब हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वे हमारे कल्याण में कार्यकारी होते हैं। मैं यही मान के चल रहा हूं कि हम सब की दृष्टि निर्मल हो गई, हमारा ज्ञान भी भला है, अब हम जो भी जीवन में करेंगे वो हमारे कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होगा। तो कर्म बंध की प्रक्रिया को कल हमने समझा था कि कौन से ऐसे परिणाम हैं जिससे हमारा ज्ञान ढक जाता है, कौन से ऐसे परिणाम हैं जिससे कि हमारी दृष्टि ढक जाती है, हम ठीक ठीक से जो है और ना आंख से काम ले पाते हैं ना अन्य इंद्रियों से हम काम ले पाते हैं, इंद्रियों की विकलता प्राप्त होती है। दर्शनावरणी कर्म अगर हमारे अंदर पड़ा है, जैसे कि ज्ञान कम और ज्यादा हो जाता है वो काहे से होता है, हमारे ज्ञानावरणी कर्म का आवरण जितना हटता है, जैसे कि खिड़की पर पर्दा डाल के रखा है और थोड़ा पर्दा हटा तो उतनी रोशनी भीतर आ गई, और ज्यादा हटा तो और रोशनी भीतर आ गई, पूरा पर्दा हट जाए तो पूरी रोशनी, या कि हम ही उससे बाहर निकल के आ जाएं, ऐसा केवल ज्ञान वास्तव में हमारा प्राप्तव्य है। उस केवल ज्ञान पर भी हमारे आवरण डला हुआ है, हमको तो थोड़ा सा ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान अपन को है, बिना इंद्रियों के तो अपन को आंख बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखता, बताओ इतना थोड़ा सा तो अपना ज्ञान है, है? और अगर किसी चीज को ठंडा है कि गर्म पता ही नहीं लगता, देख करके थोड़ी पता लगेगा, छूना पड़ेगा, और छूने की सामर्थ्य ना हो अगर तो अपन को ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है, मन में विचार कर देते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती, अपना ज्ञान कितना लिमिटेड है, कितना सीमित है, क्योंकि जो भी किसी दूसरे की मदद से होगा वो सीमित ही होगा, और जो बिना किसी मदद के अपने आत्मा में से होगा वही असीम हो सकता है, वो केवल ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान को ढकने वाले कौन से हमारे परिणाम हैं ये हमें जान लेना चाहिए, ताकि उससे हम बचें और हमारा ज्ञान विकसित हो। ज्ञान की कमी बेशी अलग चीज है और ज्ञान का विकृत होना अलग चीज है, ये ध्यान रखना। ये जो ज्ञानावरण कर्म है वो हमारे ज्ञान को कम ज्यादा कर देता है, लेकिन हमारे ज्ञान को खोटा बना देने वाला वो एक कर्म अलग है, वो मिथ्यात, वो दर्शन मोहनी, उसको अपन बाद में समझेंगे। अभी तो ज्ञान में जो कमी बेशी देखने में आती है, एक ही गुरुजी हैं और 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन में आता है, कोई गोल्ड मेडल ले लेता है और कोई फेल भी हो जाता है। अब बताओ, ज्ञान तो सबको दिया था, बराबर बराबर दिया था, लेकिन जिसके जितनी सामर्थ्य है वो झुक गया, आंख झुक गई। अरे गौरव होना चाहिए था कि मैंने ट्राई की थी, उनने 85% वालों को लिया, मेरे 80% आए तो कोई मैं अयोग्य थोड़ी हो गया। 500,000 बच्चों में से आपको 300 बच्चे लेना है तो ले लो आप, बाकी हम अयोग्य थोड़ी हैं, तो फिर हम किस बात पे अपना माथा झुकाएं, किस बात के लिए हम संकलेश करें। लेकिन हम बच्चे लोगों को संकलेश करवा भी देते हैं, कह कह के कहते हो नहीं भाव, हम आते उनको तो हो गो, और तुम पढ़ते लिखते नहीं है, घूम अभ्रत रहते, उसको और संकलेश के इतनी मेहनत। ये सब ज्ञान, मैं आपसे ये बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूं, ये ज्ञान को ढकने की बातें हैं ये सब। जितना संकलेश करेंगे और करवाएंगे, कभी कोई ये नहीं कहता, पीठ नहीं थपथपाता कि चलो कम से कम आपने 80% तो लाए हैं, कोई डोंट वरी, कोई चिंता होनी चिंतित होने की बात नहीं है, और दूसरी जगह है जिनमें हम अपनी योग्यता दिखाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि सभी डॉक्टर बनेंगे तभी योग कहलाएंगे, सभी इंजीनियर बनेंगे तभी योग कहलाएंगे, क्या और कोई जीता नहीं है, क्या कोई और कोई, मैं तो सोचता हूं कि जो आदमी है वही ठीक है, नहीं हो पाया इंजीनियर, नहीं हो पाया डॉक्टर, वरना डॉक्टर बनने के बाद भी आदमी नहीं बन पाए तो सब चौपट है। क्या मतलब हुआ आपका उस ज्ञान का? ये अपन बच्चों को नहीं सिखाते हैं, बल्कि उनको और अधिक एक कंपटीशन में और डाल देते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब ज्ञान पर आवरण करने वाली चीजें जरा समझना चाहिए। जितनी क्षमता है उतना ही हम अध्ययन चिंतन मनन कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। देखो, ज्ञानावरण का शरोपसम भी हो जाए लेकिन शरीर में सामर्थ्य में हो गए तो भी ध्यान रखना, कि ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाओगे। वीरांतराय का शरूपसम भी आवश्यक है, ज्ञान के साथ बल भी चाहिए। इसलिए हम जो है ज्ञान पर आवरण के भाव कौन से होते, इस पर जरा सा विचार करें। कल तो मैंने संक्षेप में बताया था, आज थोड़ी सी और चर्चा इसी के बारे में कर लेते हैं। पांच छह चीजें तो कल अपन ने समझी थी कि जब हम किसी अंतरंग और ईर्ष्या भाव से और दूसरे के ज्ञान में दोष लगा देते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, चुप रह जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान होने के बाद भी या तो उसका निषेध करना या कि चुप रह जाना, दोनों ही बातें हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जब हम उसकी प्रशंसा नहीं करते ज्ञान की और चुप रह जाते हैं, तो वो एक तरह का दोष लगाना ही तो हुआ, प्रदोष कहलाता है, इससे हमारा ज्ञान ढकता है। फिर कह रहे हैं कि किसी कारण से और कोई पूछे तो उसको ज्ञान नहीं देना, या कि किताब नहीं देना, या कि जिस गुरु से ज्ञान सीखा है उसे भी नहीं बताना, ये सब जो है निन्नव है। ऐसा करने से भी ज्ञान पर आवरण पड़ता है। मैं आज ये पूरी किताब ही ले आया क्योंकि कहीं कहीं भूल जाता हूँ, अभ्यास होने के बाद भी जो है, और अब श्रेयोपम ज्ञान है फिर भी अपन इसी पर से विचार करते हैं। अच्छी परिभाषाएं लिखी है पूज्यपाद स्वामी ने कि देने योग्य ज्ञान को नहीं देना, यह जो है मात्सरी है। आपके पास ज्ञान था, दूसरे को ज्ञान पाने की जिज्ञासा भी है, तब भी नहीं दे रहे हैं, क्यों? मेरे से ज्यादा ज्ञान इसको ना हो जाए, इसलिए ऐसे मात्सरी से ज्ञान नहीं देना। ज्ञान व्यवच्छेद करणम मंत्रायः, ज्ञान की जिससे क्षति पहुंच जाए ज्ञान को, ऐसा कोई कार्य करना, या ज्ञान के उपकरण को ही, जैसे मैंने कल बताया था कि लाइन कटवा दी, बिजली बुझा दी, अरे अब सो जाओ, अब कहां पढ़ रहे हो, इतनी देर हो गई, ऐसा नहीं करना। उसकी भावना है स्वाध्याय की तो करने दो, उसको बीच में व्यवधान डाल रहे हैं आप, तो वो सब जो है अंतराय कहलाएगा। तो हमें भी कोई ना कोई, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अंतराय डालेगा। और वाक कायाभ्याम पर प्रकाश ज्ञान संवर्धनम आसाधनम, मुख से भी और शरीर से भी दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान का आसाधना करना। बाजू में बैठे हैं, वचन का चल रही है, उदाहरण दे रहे, बाजू में बैठे वचन का चल रही, ध्यान तो है नहीं है वचन का में ज्यादा, अब धीरे से का है कह रहे कशु समझ नहीं करें, ऐसे ही है सब। अब बाजू वाले से ऐसे हाथ हिला करके कुछ भी एक्शन, सब आप समझते हैं उसको, या कि धीरे से वचन से ही, वचन से भी कह दिया, अपन के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार ऐसी, जबकि वो ठीक कह रहा है सामने वाला। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान को इस तरह से शरीर से और वाणी से उसका निषेध कर देना, यह साधना कहलाएगी। शायद मैं कल ठीक से नहीं बता पाया था, प्रशस्त ज्ञान दूषणम उपघाता, सही ज्ञान में दूषण लगा देना, ये तो ज्ञान को नष्ट करने का ही उपाय है, इसको उपघात कहते हैं। इससे अपना ही ज्ञान, अपन को विचार करना चाहिए कि अपनों ज्ञान कमती है तो अपन ने जी सब उपद्रव करे ही है पहले, इसे कमती अपनों ज्ञान। हाँ, इसलिए बता रहे हम कि अगर ज्ञान कम है, और दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान प्राप्ति की रुचि भी है। आज जो है ऐसा नहीं है कि लोगों के क्षयोपशम नहीं है, क्षयोपशम बहुत है, ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ललक है, लेकिन कौन सा ज्ञान, जौन से आत्मा को कल्याण हो, जौन से संसार चले, दो ही तो ज्ञान है। सो आज जितना भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है वो दो रोटी कमावे को ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं। अपने आत्मा का कल्याण हो इसकी किसी को चिंता नहीं। कभी भी कोई पिता अपने बेटे को और सब सुख सुविधाएं दिला देगा, एक ठो किताब खरीद के नहीं देगा, धर्म की किज्जा सोई रखो, और तो तुम 500 की और ले आए हो, जौन पढ़वे की अपने स्कूल की सुबह तो रखो ही, लेकिन जी रखो, तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हें एक किताब ये देते हैं, कभी इसमें बांच के देखना, इसमें आत्म कल्याण की बात लिखी है। ऐसा ज्ञान दान देते क्या अपने बेटे को? और दुनिया भर के मिथ्या ज्ञान, ये सब जितना भौतिक ज्ञान है समझना मिथ्या ज्ञान है। हाँ, इससे कल्याण नहीं होता, इससे संसार में होशियार कहां लगत, बस इतना ही है। तो संसार में होशियार बनने का हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उस होशियारी के साथ में अपने कल्याण का बोध भी तो होना चाहिए। थोड़ा सा हमसे संस्कृत नहीं बनती अच्छा, और अंग्रेजी तो बन जाती, बातों स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ दी तो संस्कृत नहीं, हमसे भक्ता अंबर पढ़ता नहीं बना, तो सीखो। जब आप इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसको मेहनत करके पढ़ लेते, तो दो धर्म के शब्द पढ़ने में और आपको कहीं कोई तकलीफ महसूस होती, इसका मतलब है कि रुचि नहीं है। तो ये अरुचि आपके ज्ञानावरण को और बांधेगी। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में आलस करना यह भी ज्ञान को ढकने का एक उपाय है। लिखा है अभ्यास आलस्य। सम्यक ज्ञान का अभ्यास करने में, धर्म की दो बातें पढ़ने में, हमसे नहीं, हमारे समझ में नहीं आउट, तो तुम्हारे समझ में वो इंडिया टुडे तो आउट है। हाँ देखो, हम सीधी सीधी कह रहे, बुरे नहीं मानना आप। ब 15 रुपया की किताब आ रही है, अगर 20 की आ रही है ब 15 दिन में, तो बा खरीदने हैं, और अगर ये तो 2 रुपया उन्हें डिस्काउंट हो रहा हो तो ले लू ना, पूरे की नहीं ले। हाँ कोई डिस्काउंट कर दे इनको, धर्म की किताब पे डिस्काउंट चाहिए, इंडिया टुडे पे कहूं डिस्काउंट नहीं भाव बतो, जितने की उतने की लेने पर, और उन्हें बनो का है, दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं जिनका कोई वो नहीं, जिसने कोई आत्मकल्याण या अकेली जानकारी हासिल हो जाती, उसको ज्ञान न समझना आप। यहां जिस ज्ञान की चर्चा चल रही है वो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान में ये सारी चीजें बाधक बनती, और कह रहे कि आचार्य और उपाध्याय की विपरीत चलना यह भी ज्ञान को ढांकने का एक उपाय है। हमारे ऐसे भाव जिससे हम आचार्य उपाध्याय के विपरीत चलते हैं, उससे भी हमारा ज्ञान ढकता है, और श्रद्धा अभावा, ज्ञान तो हासिल कर रहा है लेकिन श्रद्धा वृद्धा कुछ भी नहीं है, तब भी जो है श्रद्धा के बिना ज्ञान हासिल करने से ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि ज्ञान पर आवरण और पड़ता है। अपने बहुत ज्ञान का अहंकार करने से भी ज्ञान ढक जाता है। मिथ्या उपदेश देना, बहुश्रुत अवमानना, बहुत ज्ञानवान का अनादर करना, हाँ उसकी प्रशंसा में करना ही अनादर है, ध्यान रखना। ये भी चीज है, जब आप प्रशंसा उसकी करने लायक थे तो प्रशंसा नहीं की, चुप रह गए, ये भी इसका मतलब अंदर अंदर कहीं अनादर का भाव है। वो कह रहे हैं और कहते हैं कि अबद्ध प्रलाप, जो चीज आगम में कही ही नहीं है उसको आगम का हवाला देकर के अपने मन से कहना, ये असंबद्ध प्रलाप है। कुछ भी कह रहे हैं उत्सूत्र वाक्य, जो आगम में सूत्र का अर्थ है उससे विपरीत अर्थ बता देना, इसलिए बहुत डर करके व्याख्या करनी पड़ती है कि जैसा भगवान ने कहा है मैं ठीक वैसा ही अर्थ बता पा रहा हूं कि नहीं। अगर उत्सूत्र हो गया, सूत्र के विरुद्ध वचन का हो गई, तो उससे हमारे ही ज्ञानावरण कर्म का बंद होने वाला है। और कहते साध पूर्वक ज्ञान अधिगमः, किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ज्ञान हासिल करना कि हम चार बातें सीख गए हैं तो विद्वान कहाँ हैं, चार लोगों में हमारी जय जयकार होगी, इसलिए जिन वाणी का अभ्यास कर रहे, तो कहते इससे भी आपका सच्चा ज्ञान ढकेगा। बताओ अगर पांडित्य की भावना से ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो पंडित पंडित तो बन जाओ, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का बंद भी होगा। अपने आत्म कल्याण परिणामों की निर्मलता के लिए मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, दूसरे को बताने के लिए नहीं, अपनी विद्वत्ता के लिए नहीं। हमने आपसे कहा था एक बार कि आचार्य श्री ने जब हमको टड़ा भेजा पंच कल्याणक में, तो क्या कहा था, देखो छोटी छोटी जगह से जाओ और वहां पर चार लोग भी कहें कि भगवान कुछ मोक्ष मार्ग की बात सुनाओ तो सुना देना, ये नहीं सोचना कि मैं तो इतना अच्छा वक्ता और इतना विद्वान हूं, जब 2-5 हजार लोग होवे तभी सुनाऊंगा, मैं इतने से लोगों को क्या सुनाऊं, ऐसा नहीं। क्योंकि उपदेश तो करुणा पूर्वक होता है, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं होता है। इसलिए चार लोग भी अगर अपने कल्याण के लिए पूछें तो चार को भी सुना देना, नहीं जब 4 हजार होंगे तभी सुनाऊंगा, ऐसा नहीं। इससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, और अगर हम इससे उल्टा चलते हैं तो ज्ञान ढकता ही है। और कहते हैं कि शास्त्र के द्वारा अपनी आजीविका चलाना, इस तरह से भी भारतीय ज्ञानपीठ की किताबें तो मंगा लें, अब भी 25% डिस्काउंट दे दें, स्वप्ने ढल लें और फिर पूरे दाम पे बेच देंगे, 25% बचा लो, जो का कहा है, जो कोई ऐसा करे सबके लाने कह रहे, हमको अकेले एक व्यक्ति से नहीं कह रहे जी, ध्यान रखना जी, न करना
अगर वहां से ये बात अलग है कि वो दुकानदार है भैया, वो अपनों कर रहे हो, वह बात अलग है, लेकिन अपन तपन ऐसे कर लगे कि इकट्ठी मंगवा लो 5,000 की भारतीय ज्ञानपीठ से हो, धर लो अपने थे, और फिर बाद में जितनी कीमत डरी उतने बेचो, जबकि ज्ञानपीठ ने तो आपको 40% तक कमीशन दो हुई है, वो कहां चलो गो, वो धर लो आपने, नहीं जितने में आई है उतने में बेचना, इसको नहीं कहेंगे साथ विक्रय, इसको कहेंगे जिसमें हम मुनाफा कमा करके और बेचते हैं, किसी को उपलब्ध कराना कि भैया हम मंगवाएं देते आपके लाने से जो हम आपको दे देंगे, आप इतने पैसा दे दो, इसमें नहीं है, लेकिन हम उससे ज्यादा लेकर के और कम की कम का शास्त्र दे देवें, उससे अपनी आजीविका चलावें, तो ये ठीक नहीं माना जाएगा, इससे ज्ञान ढकेगा, ऐसी सब बातें हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो एक और आई वो मुझे कहनी है कि ज्ञान का दुरुपयोग करना और पांचों इंद्रिय और मन का दुरुपयोग करना, इससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो ही बनते हैं, मुख्य बात इसमें समझने की। पांच इंद्रियां मिली हैं, सुजी आंखें दूसरे की बुराई देखवे नहीं मिली, और अगर इन आंखों से दूसरे की बुराई देख रहे तो आंखों को दुरुपयोग कर रहे, अगली बार न मिले। हाँ बहुत ऐसी सीधी बात कह रहे हम, ये आंखें हमें दूसरे के पर के दोष देखने नहीं मिली, अपने दोष देखने के लिए तो इनको बंद कर लो, सो दिखा है वो खोलो सो बाहर के दोष दिखेंगे, अगर देखना तो दूसरे की भलाई देखना, सुनना तो अपनी निंदा सुन लेना कान से और दूसरे की प्रशंसा सुनने उत्सुक रहना, लेकिन होता उल्टा है कि अपनी प्रशंसा सुनने जी कान उत्सुक रहते हैं और दूसरे की निंदा सुन भी काय उनको कैसो होगा, हमने ऐसी सुनी तुमने कैसी सुनी, अब हमने सोई सुनी, अब ले इन्हें बहुत रुचि है, इससे क्या होगा, हाँ जी लगता नहीं है कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे कर्म बनते ज्ञानावरण दर्शनावरण दो ही, इस तरह पांचों इंद्रियों का अगर जिसके लिए मिली है वो उपयोग ना करके दुरुपयोग किया है तो पांचों इंद्रियों से जो दर्शनावरण जो जो दर्शन की क्षमता मिली जिसको पंचक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन कहते हैं वो सब आवरण को प्राप्त हो जाएंगे, और मन का उपयोग ठीक न करना, मन से खोटे विचार करना, इससे क्या हुआ, इससे अपने अपनी जो सामर्थ्य मिली थी उसका दुरुपयोग कर लिया, तो वो सामर्थ्य अब ढक जाएगी अगली बार, और जो ज्ञान मिला है जिससे कि हम अपने आत्मा के कल्याण की बातें जानते, सो उससे दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसी क्षयोपशम से, ये ज्ञान का सदुपयोग नहीं है, हमने बहुत ऐसी किताबें देखी जिनमें कि लोग अपने क्षयोपशम का कैसा दुरुपयोग करते हैं, निंदा लिखते हैं, पत्र पत्रिकाएं बहुत निकलती उनमें दूसरे की निंदा ही लिखी, उसी को भी ज्ञान मान रहे, उनको यही में उपयोग लग रहा, नहीं नहीं निकलती बहुत सारी इस तरह की जिनमें बस छीछालेदारी है, इनको ऐसा होगा उनने ऊसो कर दो, एक लेख इनमें लिखो सो उनने एक और लेख लिख दो उसके ऊपर से, इसमें ज्ञान कितना लग रहा है, लेकिन ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, नहीं अपन को उसका समर्थन करना चाहिए, इतनी सब बातें इसमें समझने की हैं। और आखिरी में लिखते हैं कि जो व्यक्ति मुनिजनों से घृणा रखता है वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों का बंद करता है, यति जन जुगुप्सा आद्यः दर्शनावरणस्य आश्रय कारणम्, जो यति जनों से जो है जुगुप्सा रखता है अर्थात घृणा करता है कि हो ही नहीं सकते मुनि महाराज कहाँ रखे हैं, बड़े शिथिलाचारी हो गए, आज तो जंगलों में रौचैयत तो सोते रहते हैं, ऐसी सब बातें लोगों को कहते हैं अपन और लोग भी उनको सुनते हैं, ध्यान रखना जहां पर किसी गुरु की निंदा हो रही हो वहां से उठ जाना, सुनने में भी उतना ही दोष है जितना कि करने में, अगर आपने चुपचाप सुन लिया भले ही वे कैसे भी क्यों ना हो, हाँ साक्षात उनमें भी दोष हैं तब भी हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे, वो उनका काम है, वे अपनी आलोचना खुद करें तो करें, हमको हो आलोचना करने वाले, क्योंकि हमें अपने कर्म नहीं बांधना है, इस तरह इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज जो है हमें कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिला जो हम आपको सुनाएं, तो भैया ये छोटे छोटे हमने उदाहरण सुना दिए, और वैसे आज हमारा मन नहीं था, फिर भी हमने कहा कि कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा, तो अपने को ये सावधानी रखनी चाहिए, अपने परिणामों को हमेशा टटोलते रहना चाहिए कि अपने परिणाम जहां बिगड़ने लगे, संस्कार वश जल्दी बिगड़ जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उन परिणामों को हमेशा संभालते रहें ताकि हमारे ये जो कर्म का बंध है वो कमती हो, क्योंकि परिणाम जिसके संभले हैं उसे ही कर्म का बंध कम होगा। हमने आपको देखो उदाहरण याद आ गया, आपका भाग्य ही है ऐसा। हम सोच रहे थे कौन उदाहरण ही नहीं याद आ रहा। हम वैसे एक आध बार छोटे उसमें सुना चुके हैं, एक पंडित जी थे हीरा लाल जी पंडित जी, अब नहीं रहे साढ़ी उम्र के, तो वो जो है वो वचन क्या करते थे, कर्म सिद्धांत उनको बहुत पक्का था, वो सुनाते थे तो 10-15 लोग बैठते, ज्यादा नहीं बैठते, कर्म सिद्धांत की चर्चा में इतने लोग बैठे बहुत बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 2-4-10 लोग तो उनकी वचन का में 2-4-10 लोग बैठते थे, उसमें से एक बहुत गरीब आदमी था। सो एक दिन जो है वो पकड़ा गया, चोरी करते पकड़ा गया। अरे भाई वचन का में बैठता है, इतनी सब बातें सुनता है और उस चोरी में पकड़ा गया, बड़ी हंसी हुई, लोगों को अच्छा भी नहीं लगा। लेकिन पहले कोई चोरी में पकड़ो जावे तो यह सीजे सब कोर्ट कचहरी नहीं होती थी, पंचायत बैठ गई, 5 जने बैठ गए समाज के, भैया अपने घर की बात है, मंदिर में बैठ जाओ और स्वीकार कर लो तुम, सो हम माफी करें ले, या थोड़ा बहुत दान इत्यादि करना, अब नहीं करना, ऐसी प्रक्रिया थी। बिठा लिया उसको और सब बातें हो गई, भैया तुमने करी कह लो करी, चुराव का होते उन्हें मालूम, भूसा को बोरा चुराव। अब बताओ एक भूसा का बोरा चुराया 3.5 रुपए का बिकता था, वो चुरा नहीं गए तो क्या चुराओ, उतनी और कीमती चीजें रखी थी वो नहीं चुराई उसने, वो चुरा लिया। अब जब स्वीकार भी कर लिया और पकड़े कैसा गया, क्योंकि भूसा का बोरा उठा के अपने घर तक ले गए, उसमें छेद था सो उसमें से भूसा गिरता गया, अब लाइन खिंच गई, अब कहूं चोरी गई हुई तो जाने ये कैसी करी है पता नहीं, तो पकड़ा भी गया था। दूसरे दिन उसने स्वीकार भी कर लिया, पर मन में एक विचार आया कि इससे पूछा जाए कि इसने और चीज क्यों नहीं चुराई, जी क्यों चुराई। तो मालूम उसने क्या कहा कि मेरे खाने के लिए तो कुछ नहीं था सो मैंने तो सहन कर लिया, लेकिन 2 दिन से बेटा जो है दूध दूध चिल्लाता है, मेरे पास तो कुछ भी उसको खिलाने लायक नहीं बचा था, ऐसी स्थिति मेरी बन गई, तब मैं क्या करूं। तो फिर मेरे मन में आया, लेकिन मैं पंडित जी के यहां पर सुनता हूं कि तीव्र मंद जैसे भाव से भाव किए जाएंगे वैसे कर्म बंधेंगे, सो मेरे मन में इतनी तीव्रता नहीं थी कि मैं बहुत अधिक चुराऊं, मुझे तो जितना आवश्यक था सो उतना मैंने चोरी करी, चोरी भी करी, बुरा काम भी किया, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं किया है, परिणामों में फिर भी जो है ध्यान था कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन मैं मजबूर हूं। तो भैया इस तरह अगर अपन कर्म बंध की प्रक्रिया से थोड़े भयभीत हो तो अपने परिणामों में कर्म करने के बाद भी थोड़ी सी कमी मंदता आ जाएगी, अरे भाई अपन को नहीं करना है और अब ऐसी तीव्रता से कर्म नहीं करना जिससे कि बाद में और भोगते समय और तकलीफ हो, ऐसा सब विचार करके अपने परिणाम हमेशा संभालते रहें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर में ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञनाग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, शांत निरातुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप से नदी तट पर तलवर साकी झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दानों की घड़ियों में अंतर धरती धरती हो धरिया भगवंदन कर कर टूट पड़े खिल जावे
प्रकाश देखो, प्रकाश देखो आपका पर हाथ में को मानी सी बतानी है। जीवों के जताए को कामना सताए को मजे हो रे आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार देखो ज्ञान के तुझे रोका लो सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। भगवान भारती रोज को दिन रहे जो तेरो शरणा गए
तो उदत चंदन चंदन तोस्त कई कर सुधी पेश भोग कलार कई
श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में। ओम ओम परम पूज्य स्वामिला श्री भक्त सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में। अनंत प्राप्त है अरविंद रूपांति।